हाँ जी
बाबा जी, ₹5,000 का दान दिया है, देता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ₹5,000 का दान देता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे होगी?
बात करेगा तो क्रोध में आकर बात करेगा है? नहीं करेगा ना, तो एग्जैक्ट पहचान नहीं होगी। कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है कि नहीं? चलो हाथ ही है और हाथ में, हाथ से वो थप्पड़ मारता देखा जाता है तो पहचान होगी कि नहीं है? क्या पहचान हो जाएगी? उसने क्रोध को धारण कर रखा है या छोड़ दिया है? हैं? अच्छा, आंख लाल लाल कर लेता है तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। बाबा ने बोला है काम विकार का पता नहीं चलता, काम विकार गुप्त है लेकिन क्रोध बाहर आ जाता है या अंदर का अंदर ही रहता है, तो क्रोध से पता चल जाएगा। और
बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, ये बात कैसे है?
ये बात कैसे है? क्यों? जिसे तुम शिव बाबा कहते हो वो आत्मा है कि देह है? आत्मिक स्थिति वाला है या देवान वाला है? हैं? आत्मिक स्थिति वाला है। तो जो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है या नहीं है? जो बना के जाता है वो अंतिम जन्म में भी आत्मिक स्वरूप वाला विष्णु रूप है या नहीं है? आदि में भी विष्णु रूप तो अंत में भी विष्णु रूप, तो साबित नहीं हुआ कि और आत्माएं आत्मिक स्थिति में उतनी नहीं रह सकती जितनी 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 राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में होती है, और आत्माएं तेजी से नीचे गिरती है। जैसे इस्लाम धर्म का बीज होगा, रुद्रमाला में इस्लाम धर्म का बीज होगा कि नहीं? 21 जन्म तो देवता बन के रहेगा, 21 जन्म के बाद जो 22वां जन्म द्वापर युग में होगा, इब्राहिम जब ऊपर से आता है तो सबसे जास्ती पतित कौन बनेगा है? जिसमें प्रवेश करेगा वो आधार मूर्त सबसे जास्ती पतित होता है, तभी तो उसमें प्रवेश होता है। ऊपर से आने वाली आत्माएं सबसे जास्ती में पतित में प्रवेश करती है या पावन में प्रवेश करती है? पतित प्रवेश करती है। और उससे भी ज्यादा पतित उसका बाप होगा या वो खुद होगा? बाप उससे भी ज्यादा पतित होगा। और
बाबा आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा परमपिता परमात्मा शिव है, तो वो
आत्माओं में, आत्माओं के बीच में उसकी, उसको टैली किया जा सकता है? परमपिता परमात्मा शिव को दूसरी आत्माओं के साथ टैली कर सकते हैं? दूसरी आत्मा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और वो तो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, टैली कैसे करेंगे? टैली उससे किया जाता है जो समान हो, कोई बात में तो समान हो। हाँ, और
ब्रह्म क्या है?
ब्रह्म क्या है?
अध्यात्म क्या है? कर्म क्या?
एक चीज पूछो पहले, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां, ब्रह्म माने बड़ी मां। जो इस सृष्टि पर बड़े से बड़ी मां है वो ही ब्रह्म है।
अध्यात्म क्या है?
अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा। जो आत्मा के अंदर की बात है उसे ही अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म की बात को मनुष्य जानेगा, देवता जानेगा, राक्षस जानेगा, या आत्माओं के अंदर की बात को जो जन्म मरण के चक्र में न आने वाली आत्मा है वो जानेगी है? कौन जानेगा है? मनुष्य आत्माओं के अंदर की बात को कौन जानेगा, अध्यात्म को कौन जानेगा? अरे परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय और कोई जान ही नहीं सकता अध्यात्म। इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अगर आप लिखते हैं तो उसमें ईश्वरीय शब्द भी लिखने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सिवाय अध्यात्म को कोई बता ही नहीं सकता आत्मा के अंदर क्या है। वो अध्यात्म है, अध्यात्म सदैव ईश्वरीय ही होता है, आसुरी तो हो ही नहीं सकता, और अध्यात्म मानवीय भी नहीं हो सकता, दैवी नहीं हो सकता, क्योंकि देवताएं तो और ही ज्यादा बुद्धू होते। मनुष्य ज्यादा बुद्धू या देवताएं ज्यादा बुद्धू? देवताएं और भी बुद्धू, तो अध्यात्म को जानते ही नहीं, जान ही नहीं सकते। अब्बल नंबर देवता कौन है? ब्रह्मा। कृष्ण की सोल अब्बल नंबर देवता है सतयुग में। उसका बाप देवता है या भगवान है? भगवान भगवती, वो भगवान भगवती।
कर्म क्या है?
जो कर्म इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है।
अधिभूत और अधिदैव किसी का?
अधिभूत माने भूतों के अंदर क्या क्या है, अधि माने अंदर, भूत माने प्राणी, भूत माने पांच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनके अंदर क्या क्या शक्ति है, कैसे कार्य करते हैं, इस बात को जो जानता है वो अधिभूत को जानने वाला है।
ये माया विधि जो है, हम ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ में बहुत तकलीफ देती है। तो बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मण बच्चों ने कुछ गलतियां किया तो फटकार दो, लेकिन बाबा क्यों नहीं फटकार?
क्योंकि माया बेटी के साथ बच्चों का हिसाब किताब है या भगवान का हिसाब किताब है? बच्चों का हिसाब किताब है। माया बेटी प्यार का सागर है या भगवान प्यार का सागर है? भगवान तो प्यार का सागर है, वो क्यों कहेगा कि नहीं मैं फटकारूंगा, डांटूंगा, डपटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा?
गुरु में तो बोला है संगयुग में जो कुछ होता है वो पांच साल में वैसे वैसे पेड़ होता है। और मुरली का पॉइंट तो है संगयुग पर तब्दील की रेखा परिवर्तित करने वाला बाप सम्मुख में पाठ बजा रहे हैं।
सन्मुख में पाठ बाप बजा रहे हैं, आपके सन्मुख पाठ बजा रहे हैं, आप पहचाने या ना पहचाने, इसमें कोई शक है क्या? आपकी तकदीर की रेखा पलटने वाला बाप जो है वो इस समय संगम युग में सन्मुख पाठ बजाय रहा है या गुप्त में पाठ बजाय रहा है? सन्मुख पाठ बजाय, आपको शक आता है?
शक नहीं है, विश्वास है, लेकिन तकदीर की रेखा परिवर्तित करने वाली,
तकदीर की रेखा परिवर्तित कर तभी होती है, तकदीर की रेखा परिवर्तित तभी ही होती है जबकि पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्मा तकदीर की रेखा पलटने वाले की बात माने। आप बात मानेंगे तो आपकी तकदीर की रेखा पलटेगी, आप बात नहीं मानेंगे तो आपकी रेखा नहीं पलटेगी। आपने क्यों नहीं मानी? क्योंकि 63 जन्म के आपके संस्कार हैं। 63 जन्म में जो बाप इस सृष्टि पर सदा कायम रहा है आपने उसको ठुकराया है, उसकी बात नहीं मानी है, वो बात ना मानने के संस्कार अभी भी आपके अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए आप नहीं मानते हैं। जिनके अंदर वो संस्कार नहीं है बाप की बात को ठुकराने के, वो 63 जन्म भी अष्टदेव ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाप को बहुत महत्व दिया है, बाप की बात को बहुत महत्व दिया है, उनके लिए बाप कहते हैं कि इनके इन 8 की तकदीर की 100% रेखा परिवर्तित करने वाला बाप इनके सन्मुख है। सन्मुख है उसका प्रूफ भी बताया, बाप बच्चों के बिगर नहीं रह सकता, बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते, बिना संपर्क संसर्ग किए रह ही नहीं सकते, उन बच्चों को संपर्क भी चाहिए, बाप का संसर्ग भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। जो और असुरों के संबंध में आने वाली आत्माएं रही हैं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको संपर्क संसर्ग मिले या न मिले बाहर में जाओ, हमारा धर्म पिता तो हमको मिल गया, वो उसी में खुश हो जाएंगे। है? नहीं समझ में आया? तो बाप सन्मुख आया हुआ है कि नहीं, गलत बात तो नहीं है? तकदीर की रेखा पलट रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पलट रहा है।
एक मुखी जी बोला है दूसरे धर्म की आत्माएं परम धाम में पड़ी रहती है, तो दुख भोगने से पड़े रहना अच्छा है?
दुख सिर्फ कलयुग के अंत में ज्यादा होता है या सतयुगत रेता द्वापर में भी होता है? तो सतयुगत रेता द्वापर का सुख छोड़ दो, जो सतयुग का त्रेता का द्वापर का 2500 साल का हर युग में जो सुख भरा हुआ है वो सुख छोड़ दो, कलयुग के अंत में जो अति दुख आता है उससे बचने के लिए ऐसे कोई करेगा है? अरे ज्यादा सुनो तुम्हें सुख मिल रहा है, दो पलड़े रखो, एक पलड़े में सुख जास्ती है कल्प में और एक पलड़ा जो है ऊपर उठा हुआ है उसमें सुख बहुत कम है, एकदम ऊपर नहीं उठा है लेकिन है ऊपर उठा हुआ है, तो क्या जास्ती सुख को छोड़ देंगे? थोड़े दुख से मुकाबला करने से अंतिम जन्म में सबसे जास्ती दुख होता है ना, नहीं होता है? अंतिम जन्म में जो सबसे जास्ती दुख होता है उस एक जन्म के दुख के मुकाबले बाकी के 82 जन्म, मुरली में तो बोला है कोई कोई आत्मा ऐसी है जो 82-83 जन्म भी बहुत सुखी रहती है, तो आप अपने को 82-83 जन्म वाले क्यों नहीं समझते? नहीं समझना चाहिए है? हाँ समझना चाहिए, एक जन्म का दुख है चलो कोई बात नहीं, फिर तो सुख ही सुख है ना जन्म जन्मांतर के लिए।
तो परम धाम की आत्माएं कब तक पड़ी रहती है परम धाम?
वो परम धाम में वो ही आत्माएं पड़ी रहेंगी जिन आत्माओं ने इस सृष्टि पर पूर्व कल्प में लास्ट में जन्म लिया है, भगवान को लास्ट में पहचाना है, जिन्होंने पहले पहचाना है वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आ जाएंगी, और जिन्होंने ठुकराया है अरे आता होगा भगवान भगवान हम नहीं मानते, भगवान होता है शैतान होता है स्वर्ग होता है स्वर्ग बनाता है नरक बनाता है चले वहां से भाग यहां से, हमारे पास मोटरसाइकिल है हमारे पास फोर व्हीलर है हमारे पास हवाई जहाज है एक रेल हमारी चल रही है हैं इतने बड़े बड़े कारखाने हैं भगवान हमारा क्या कर लेगा, वो अंत तक नहीं मानते तो कहां पड़े रहेंगे है? परम नाम में पड़े रहो सुधरते रहो।
हाँ कलातीत कल्पांतकारी
अब एक एक शब्द को उठा लो, क्या शास्त्रों का एक शब्द उठाओ और बाबा से पूछो बाबा ये कैसे है बाबा वो कैसे है। कलातीत का मतलब जो कलाओं से अतीत है, क्या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कलाओं में बंधी हुई मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन संगम युग में ऐसी भी आत्माएं हैं जो 16 कला संपूर्ण से भी परे चली जाती है। सूर्य कैसा है और चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ है और चंद्रमा के साथ जितने भी सितारे हैं चंद्रमा को फॉलो करने वाले फॉलोअर वो सब कैसे हैं? 16 कला संपूर्ण और सूर्य 16 कलाओं में बंधा हुआ है कि कलाओं से परे है, वो कलातीत है। जो कलातीत है वो ही सबसे जास्ती कल्याणकारी है। चलो हवा अपना चलना बंद करे थोड़ा थोड़ा, पानी न बरसे, अकाल पड़े, आग जो है वो कहीं काम न करे, जलती है बुझ जाए तुरंत, क्योंकि पानी बरस जाता है या कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य कई दिन तक न उगे तो क्या हाल होगा? है, सब खलास हो जाएगा। सूर्य के आधार पर सारी सृष्टि चलती है। सूर्य के प्रकाश से चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह सब प्रकाशित होते हैं। वो जड़ सूर्य है और उसके बानिंद ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है। इस चैतन्य ज्ञान सूर्य के होने पर ही सृष्टि है। अगर चैतन्य ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर न होता तो ये सृष्टि भी नहीं रहती। इसलिए शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल है। इस सृष्टि पर एक शिव बाबा के सिवाय कोई चीज सदा काल मौजूद नहीं रहती। और
बाबा 25 पावन के दो अक्षर कौन से? 25 पावन के दो अक्षर कौन से?
पतित पावन के दो अक्षर कौन से? पतित और पावन, ये दो अक्षर हैं। बाबा शब्द को अक्षर बोलते हैं ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा को ही उनकी भाषा में बोलना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हिंदी तो इतनी जानते नहीं थे। न जानने के कारण जैसी टूटी फूटी वो हिंदी जानते थे वैसे ही ब्रह्म शिव बाबा ने बोल दिया। और
देवताएं बुद्ध क्यों होते
हैं? वो बताएं इसलिए बुद्ध होते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि हम सारी इंद्रियों से सुख भोगे। क्या उन्हें थोड़ी इंद्रियों से सुख भोगने को मिल जाता है सृष्टि में, बस उसी में शांत। तो सारी इंद्रियों का सुख भोगना, अनुभव लेना ये बड़ी बात, या सिर्फ श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लेना ये बड़ी बात है? सारी इंद्रियों का सुख लें, श्रेष्ठ इंद्रियों का भी सुख लें 100%, और फिर भ्रष्ट इंद्रियों का भी 100% सुख लें, तो ज्यादा अनुभवी कौन माना जाएगा? है, जो सारी इंद्रियों का सुख लेता है और फिर श्रेष्ठ इंद्रियों का भी सुख लेता है वो सबसे जास्ती अनुभव हो गया, अनुभवी हो गया। जो सबसे जास्ती अनुभवी है बच्चों के मुकाबले, उसको कहते हैं बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। अरे योनियां हैं इस सृष्टि पर, तो जो भी योनियां हैं उनके उन योनियों में कमती जास्ती इंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं? है, जैसे सांप है, सांप की इंद्रियां कम हैं या मनुष्य के बराबर हैं? कम है। तो उन कम इंद्रियों वाले का सुख होता है कि नहीं होता है? सुख होता है। तो जो भी योनियां हैं इस सृष्टि पर, उन सभी योनियों का सुख और दुख भोगने वाला, एक्सपीरियंस रहने वाला वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला है, वो ही है 100% मनुष्य। और बाकी कोई 100% मनुष्य नहीं है। 100% मनसा अगर किसी की काम करती है, मन 100% किसी के कंट्रोल में है, रहता है या हो जाता है, वो सिर्फ 500 करोड़ है या एक है? है, एक है। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है मनुष्य कितनी योनियों में जाता है? 84 लाख योनियों में जाता है, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। वास्तव में मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को, तो मनु की पहली पहली औलाद कौन है? मनु कौन? मनुआ कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा का बच्चा बेसिक में कौन बनता है? अब्बल नंबर सनत कुमार। और
शास्त्रों के शास्त्रों में श्रवण कुमार माता पिता का बहुत सेवा करता है, इसका बेहद में क्या है?
श्रवण, कीर्तन कहते नहीं, भगवान का श्रवण करो माने स्मरण करो, कीर्तन करो। तो श्रवण और कीर्तन का अर्थ समझ लिया? सबसे जास्ती संसार में किसका नाम स्मरण किया जाता है? हैं? किसका? हैं? राम का नाम स्मरण किया जाता है। हाँ ये है कि कोई निराकार राम को समझ लेते हैं, कोई साकार को ही राम समझ लेते हैं, कोई दोनों को राम समझते हैं, कोई ऐसे हैं जो समझ लेते हैं कि ये जो साकार में राम है वो भविष्य में भी निराकार राम साबित हो जाएगा, तो वो श्रवण है। लेकिन वो श्रवण है जिसकी सबसे जास्ती स्मरण स्मृति की जाती है, या उससे भी ऊंचा कोई है जिसकी स्मृति की जाती है, स्मरण किया जाता है? अरे राम वाली आत्मा से भी जास्ती किसी को स्मरण किया जाता है कि नहीं? है? है? नहीं, कमाल है। हाँ, जो राम वाली आत्मा हो उसको तो भारतवासी ही स्मरण करते हैं, लेकिन चलो विदेशों में सृष्टि के पहले पुरुष को मानते हैं आदम, एडम, जैनियों में आदिनाथ, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं या सारी मनुष्य सृष्टि के लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन सारी सृष्टि के मनुष्य राम को भगवान के रूप में मानते हैं या निराकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो राम से भी ऊंचा कौन है? है? शिव। तो उस शिव का जिसका दुनिया में सबसे जास्ती श्रवण मनन चिंतन होता है, श्रवण और कीर्तन होता है, उसकी स्मृति, शिव की स्मृति सबसे जास्ती होती है, उसका पहला पहला 100% कुमार कौन है? है? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसे राम कहा जाता है, वो ही श्रवण कुमार है। वो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लेकर, माने जो अंधे माता पिता हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में और धर्मों में है या चंद्रवंशियों में है? चंद्रवंशियों में। कौन? ब्रह्मा और सरस्वती अंधे हैं बेचारे, भगवान को तो देख ही नहीं पाते, तो उनको बुद्ध रूपी टोकरी में बैठा करके चारों तरफ राम वाली आत्मा श्रवण कुमार चक्कर लगाती है तीर्थों में। तीर माने किनारा, था माने स्थान, किनारे लगाने वाले स्थानों में चक्कर लगाती है, उनको तीर्थ दर्शन कराती है। उसका गायन है संसार में किस रूप में? श्रवण कुमार। और रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम, बस एक एक बात को उठाते जाओ। दुनिया में जो भी बातें बोली गई हैं उन सारी बातों को उठाओ और बाबा इसका बेहद का मतलब क्या? सुनो तो आप इनका बेहद का मतलब तो समझ लो, ये बच्चा बुद्धि का प्रश्न समझ लो। नहीं है रघु कहते हैं सूर्य, रघु का कुल सूर्य के कुल में जो पति के समान है, विश्वपति है। सूर्य के कुल में जो विश्वपति है वो कौन है? अरे सूर्य है, शिव। जो राम वाली आत्मा है वो उसका बच्चा है। जो विश्वपति बनता है, शिव तो नहीं बनता, तो वो हो गया रघुपति। सूर्यवंश का पति कौन हुआ? राजा राम। पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला सीताराम। सीता का नाम पहले क्यों दे दिया? क्योंकि राम भी पावन तब तक नहीं बन सकता जब तक सीता उसकी सहयोगी न बने। राम के भी पुरुषार्थ रूपी धनुष को, शरीर रूपी धनुष को उठाने वाला पहले कौन? रावण तो नहीं उठा सका। रावण माने इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक या उनके फॉलोअर्स कोई नहीं उठा सके उतना पुरुषार्थ रूपी धनुष। शरीर रूपी जो धनुष है, जो लचीला है, कैसे भी तीव्र पुरुषार्थ करने में लचीला है, वो लचीला या धनुष कहो, रथ कहो, पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, उसको कोई भी कन्याएं माताएं नहीं उठा पाती। रावण भी नहीं उठा पाता। किसने उठाया? जिसने बड़े आराम से उठा लिया वो कौन है? सीता। सीता ने उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को बड़े आराम से उठा लिया। तो जिसने उस शरीर रूपी धनुष की अच्छी परवरिश करके दिखाई, उस परवरिश करने में सबसे आगे गई, वो साबित हो जाती है कि उसके बगैर उस धनुष की अच्छी पालना कोई नहीं कर सकता और सब फेल हो जाते हैं। घड़ी घड़ी पग पग पर गलतियां करते हैं। क्यों क्यों गलतियां करते हैं? हैं? क्योंकि जो बुद्धि है ना, वो व्यभिचारी होने के कारण दूसरी दूसरी तरफ भटक जाती है। अगर एक की तरफ बुद्धि लगी रहे तो एक का परवरिश का ध्यान रहेगा या औरों का भी ध्यान आएगा? है? एक का ध्यान आएगा। एक का जब लगातार एक में ही बुद्धि लगी रहेगी तो परवरिश अच्छी होगी या बीच में भूले होंगी? अच्छी है, अच्छी ही बुद्धि रहेगी, अच्छी ही परवरिश होगी। इसलिए दिखाते हैं कि विष्णु के पांव कौन दबा रहा है? है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का अवतार ही सीता है। कौन सा पांव? ये बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है। बुद्धि को, बुद्ध रूपी पांव को बजाय सुख देने के और ही दुख देते रहते हैं। ये परेशानी, वो परेशानी, हमें ये समस्या, हमें वो समस्या, हमें खाने को नहीं मिलता, हमें पीने को नहीं मिलता, हमें कपड़े नहीं मिलते, हमारी परवरिश नहीं होती, हमारी बीमारी मुसीबत कर रही। अरे बाप रे, माता ही गर्म कर दिया। ब्लड प्रेशर ही चढ़ जाता है। और
यहाँ पांच अवतार होते हैं, वहाँ भगवान नहीं होता।
अच्छा, सही तो बोला, ये आपकी बुरली में बोला है शायद। कोई मुरली है? हाँ बताओ। अरे भगवान उसी में आता है जिसमें सबसे जास्ती पांच विकार होते हैं। दुनिया के सबसे पतित तन में भगवान आते हैं या पावन तन में आते हैं? और जो पतित है वो पांच विकारों में पतित कहा जाता है या और कोई बात में पतित कहा जाता है? हाँ, ये तो बड़ा भारी ज्ञानी आ गया, चार आंखों वाला।
हाँ, रुद्राक्ष में
नौ मुखी
रुद्राक्ष में, कपिल मुनि और दुर्गा माई
हाँ। कपिल मुनि तो जगत जगत पिता का नाम है,
हाँ
दुर्गा जगदम्बा का नाम है, जगत पिता और जगदम्बा ये नौ दुर्गाक्षों में वो रुद्राक्षों में से मुख्य गिने जाते हैं। और
अक्षर अक्षर और परम अक्षर मतलब क्या है और परम अक्षर कौन है?
क्षर उसे कहा जाता है जो क्षरित होता हो, क्या जैसे मिट्टी का ढेला उठाया उसे थोड़ा थोड़ा दबाओ तो क्षरित होगा कि नहीं है, तो वो क्षरित है। पत्थर उठा लो ग्रेनाइट का, वो कितना भी दबाओ क्षरित होगा, तो वो अक्षर हो गया। क्षर माने छीण होने वाला, और अक्षर माने जो कभी छीण नहीं होता है। तो जितने भी 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सब हैं क्षर, क्या है क्षर, क्षरित होने वाली है। संगम युग में भगवान आकर के उनको संपूर्ण रूप दे देता है पुरुषार्थ करा के, और 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते क्या हो जाती है, क्षरित तो हो जाती है, छीन हो जाती है, आत्मा शून्य की तरफ चली जाती है। तो क्षर है और एक है अक्षर, कौन जो कभी क्षरित नहीं होता, इस सृष्टि पर भी आता है, और जो इस दुनिया में सबसे जास्ती क्षरित होता है कौन, प्रजापिता ब्रह्मा। उसमें प्रवेश करने के बावजूद भी, उसकी पतित आंखों से देखने के बावजूद भी, उसकी पतित से पतित कर्मेंद्रियों में प्रवेश होने के बावजूद भी पतित क्षरित नहीं होता, तो वो है अक्षर, कौन शिव। और शिव की अष्ट मूर्तियां गाई हुई हैं, क्या शिव की कितनी मूर्तियां, अष्ट मूर्तियां अष्ट देव, तो वो अष्ट देव भी अक्षर हैं। सृष्टि के आदि से लेकर के पाठ बजाते हैं और कलयुग के अंत तक भी प्रजापिता के सहयोगी रहते हैं या नहीं रहते हैं, रहते हैं। सिर्फ अंतिम संगमयुगी जन्म में आकर के उनका भी पतन हो जाता है, माया बिल्ली उनको भी नहीं छोड़ती, तो अंतिम जन्म में पतित हो जाते हैं। अगर पतित ना हो तो फिर पावन भी नहीं बने, तो ये तो ड्रामा है, होना ही चाहिए ना। अंतिम जन्म में अति का पति तो नहीं होना चाहिए, पतित होना चाहिए, अति का पतित होगा तभी तो अति का पावन बनेगा। तो आठ हैं जो क्षरित नहीं होते, अक्षर हैं। एक है सबसे जास्ती अक्षर संपूर्ण 100%, और बाकी है नंबर बार आठ। फिर क्षरित कौन है, क्षर होने वाले कितने हैं, 500-700 करोड़, उनसे भी परे क्या बोला, तीसरा नाम क्या बताए, परम अक्षर, परम अक्षर माना उन सातों आठों से भी जास्ती अक्षर है। कैसे अक्षर है, हैं परम माने सबसे बड़ा, सबसे परे का अक्षर वो है। शिव तो सिर्फ एक ही जन्म में आता है पतितन में, पतितों के संग में, सबसे जास्ती पतित के संग में शिव सिर्फ एक जन्म में आता है, और वो परम अक्षर 84 जन्मों में उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा पतितों के संग में आता है या नहीं आता है, है? फिर भी अंतिम जन्म में सबसे जास्ती आत्म की स्थिति में कौन ठहरता है, है? जिसके कारण परमपिता परमात्मा शिव उसी का आधार लेता है, प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो परम अक्षर है। और परम क्षर भी है और परम अक्षर भी है।
दोनों ही एक ही है
ना फिर? दोनों ही है परम, वो अगर परम शब्द लगाएंगे तो एक ही है। सबसे जास्ती शरित भी होने वाला है, पतित भी बनने वाला है, सबसे जास्ती अक्षर भी बोलिए। गीता में भी श्लोक आए हैं तीन, क्षर अक्षर का ज्ञान जिसमें दिया गया है। हाँ,
धर्म पिता के साथ धर्म माता
है,
धर्म पिता
परम पिता के साथ
धर्म पिता
है,
और उसके उसके साथ जुड़ा है धर्म शास्त्र।
हाँ, धर्म शास्त्र जुड़ा हुआ है,
और धर्म माता,
धर्म माता तो ब्रह्मा हो गई, परम ब्रह्म।
गीता है धर्म शास्त्र,
गीता है धर्म शास्त्र,
भगवान
गीतापति,
गीतापति भगवान हुआ शिव बाबा यानी राम।
हाँ,
तो राम सीता ये दोनों धर्म पिता और धर्म माता।
अरे जो धर्म पिता है वो साकार होगा निराकार होगा? साकार ही होगा, साकार हुए बगैर धर्म की स्थापना कैसे करेगा?
राम पिता कहेंगे, धर्म पिता और धर्म माता।
धर्म की माता है, जगदम्बा है, जगत पिता है। और
अश्वत्थामा आत्मस्थिति में होते हुए भी कौरवों का साथ क्यों देता है?
अश्वत्थामा
आत्मस्थिति में होते हुए भी,
अश्व माने आत्मा रूपी अस्त्र, मन रूपी घोड़ा, हाँ, उसमें स्थित होते हुए भी
कौरवों का साथ क्यों
देता है? कौरवों का साथ इसलिए दिया कि अश्वत्थामा जो था उसने जीवन भर अन्न किसका खाया? नहीं, अपने बाप का खाया, और बाप ने किसका अन्न खाया? कौरवों का खाया। तो बाप के खाए हुए अन्न के ऊपर बच्चे ने विश्राम किया, आनंद लिया, तो आधा फल भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने पैरों खड़े होना चाहिए, या शिव बाबा से भीख मांग लेनी चाहिए, बाबा हमारा पुरुषार्थ अच्छा कर दो। है हाँ।
सब बच्चों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होना होगा संगम पर?
सब बच्चों को नहीं,
किसी भी धर्म का?
हाँ, सभी धर्म के बच्चों को लास्ट में
ब्राह्मण धर्म में,
ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होना है,
संगम पर
ब्रह्मा का बच्चा बनना है।
हाँ, जबकि कहा जाता है धर्म छोड़िए पर धर्म न छोड़िए।
हाँ, धर्म न छोड़िए,
यहाँ तो ये बात संगम पर लागू नहीं हो सकती।
क्यों?
क्योंकि यहाँ तो धर्म छोड़ रहे हैं ना।
अरे डायरेक्शन क्यों दिया गया है? धर्म पर ये पर धर्म न छोड़िए, धर्म पर ये माने जमीन पे गिर जाओ निस्तेज होकर के, लेकिन फिर भी धर्म, धर्म पर आरूढ़ रहो, मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, आत्म की स्थिति को नहीं छोड़ना है। आत्म की स्थिति ही हमारा धर्म है, स्वधर्म है। तो ये डायरेक्शन किसके लिए दिया गया है? फालतू दे दिया। अगर सारे ही ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ दें 500-700 करोड़, तो फिर ये डायरेक्शन देना फालतू हो गया ना। है देता कौन है ये डायरेक्शन? सुप्रीम सोल दे रहा है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ फालतू हो सकता है क्या? जरूर नंबर वार ऐसे बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, जो धरत परी है पर धर्म न छोड़िए। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, सनातन धर्म की स्थापना करके ही हटेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। जब तक षष्ठी रूपी रंगमंच पर सनातन धर्म की संपूर्ण स्थापना आदि सनातन धर्म की नहीं हो जाती, तब तक हम इस षष्ठी रूपी रंगमंच से शरीर वो आत्मा को हटाएंगे नहीं, हम फिर जन्म लेंगे, फिर कार्य करेंगे। तो ऐसे नहीं है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब धर्म को छोड़ देंगे, नहीं। ये स्वधर्म जो सच्चा धर्म है, आत्मिक स्थिति रूपी धर्म, वो सब नहीं छोड़ेंगे। कितने रहेंगे? है 4.5 लाख फिर भी इस सृष्टि पर रहेंगे।
बाप विदेशीपन क्या है? तो विदेशीपन क्या, ऐसी कौन सी निशानियां बाप ने
अच्छा शादी एक विदेशी करते हैं या स्वदेशी करते हैं? देशी और विदेशी की सबसे मुख्य पहचान क्या है? देशी क्या करते हैं? जो देशी है वो राम के फॉलोअर है, और राम जो पक्का देशी है उसके फॉलोअर भी पक्के देशी, और राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक ही स्त्री में मर्यादा है या अनेक स्त्रियों में? और बाप, बाप मर्यादा पुरुषोत्तम है या मर्यादाहीन है? जो मर्यादाहीन तन है उसमें आता है या मर्यादा पुरुषोत्तम तन में आता है? अरे है मर्यादाहीन है, तो ये अंतर नहीं दिखाई पड़ता, विदेशी नहीं दिखाई पड़ता। हाँ अरे यही तो मुख्य बात है विदेशी और देशी में। जो विदेशी होते हैं मर्यादाहीन होते हैं, अनेक शादियां करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, और देशी जो पक्का देशी होगा वो मर्यादा को नहीं त्यागेगा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सिखों ने भी इस बात को अपनाया है।
लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाते हैं कि टीका आत्मिक स्थिति की यादगार है, तो मुसलमान लोग टीका क्यों नहीं लगाते? क्या वो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते?
हाँ आत्मिक स्थिति में अगर रहते होते तो उनको उनके शरीर को जमीन में क्यों गाड़ा जाता? जब षष्ठी का अंत होता है सबके ऊपर मरहा पड़ता है, सारी षष्ठी मरणा सन्न हो जाती है, तो जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो आत्मिक स्थिति में टिकेंगी, या देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो आत्मिक स्थिति में टिकेंगे? है कौन टिकेंगे? टीका कौन लगाएंगे आत्मिक स्थिति का? देवी देवता सनातन धर्म के टीका लगाते हैं। मुसलमान आज भी टीका नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब मौत का साम्राज्य हो गया, सारी षष्ठी को मौत निगल गई, उस समय जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी उन्होंने आत्मिक स्थिति का टीका नहीं लगा पाया, इसलिए वो आज भी टीका लगाते हैं। अरे बोलो ना, नहीं लगाते।
बाबा
आदि मूल्य बोला है ये है, व्यास की एक गद्दी जाती है तो दूसरा तीसरा चौथा
व्यास गद्दी पर बैठा जाता है। हाँ आज भी तो व्यास की गद्दी चल रही
है। अरे वो नारायण नहीं होते हैं, पहली गद्दी पे बैठते हैं, फिर दूसरी गद्दी पे बैठते हैं, फिर तीसरी गद्दी पे बैठते हैं। सतयुग वाले जो नारायण है, नौ नारायण है कि नहीं? नहीं है, है? वो यहाँ भी है, व्यास भी बनते हैं। है हाँ
क्या?
हाँ रुको रुको, हाँ
अष्टपुत्र सौभाग्यवती ऐसा क्यों बोलते
हैं? हाँ क्योंकि अष्ट देव जो हैं वो सौभाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं, इसलिए ऐसे पुत्रवती पति भव के आठ अष्ट देवों जैसे देवता आचरण वाले पुत्र तुम्हारे यहाँ जन्म लें तो अच्छा अच्छा वो है कि नहीं वरदान?
हाँ।
विहंग माने पक्षी। हम पैदल चलेंगे तो जल्दी जल्दी चलेंगे, ज्यादा रास्ता पार करेंगे, या पंखों वाले पक्षी बन करके उड़ेंगे तो तेजी से चलेंगे? है पक्षी की तरह चले, जैसे हवाई जहाज के पंख होते हैं तो हवाई जहाज भी जड़ पक्षी है, वो कितना तेज चलता है, ऐसे हम भी चले पुरुषार्थ में दौड़े, ज्ञान योग के पंखों से तीखे तीखे दौड़े, तो व्यंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी।
लॉर्ड कृष्ण को याद करते हैं, इसको ही झुलाते
हैं।
लॉर्ड कृष्ण को
हाँ
विदेशी लोग याद करते हैं, इसको ही झुलाते हैं।
झुलाते हैं, अब देसी लोग नहीं झुलाते। गुजरात में जाके देखो कि कृष्ण को झूले में झुलाते हैं कि नहीं झुलाते हैं, हैं? गुजरात में ज्यादा झुलाते हैं कि दूसरे स्टेट्स में ज्यादा झुलाते हैं? गुजरात में घर घर में दरवाजे पर देखो जाके झूला पड़ा हुआ है, कृष्ण को झुलाते हैं बड़े प्यार से। तो वो गुजराती विदेशी है या स्वदेशी है? हैं? हैं? जीरे बोलते हैं। विदेशी क्यों है? अरे विदेशी क्यों है? क्योंकि गुजरात से जो निकली हुई कन्या है वो विदेश से आती है सूर्यवंशी बनने के लिए या स्वदेश से आती है? हैं? विदेश से आती है, इसलिए गुजरात भी विदेशी हो गया। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, लेकिन कब गुजर गई? चंद्रवंशी रहते रहते या सूर्यवंशी बनने के बाद? सूर्यवंशी बनने के बाद अज्ञान की रात गुजर गई। और ओह लंबा चौड़ा चक्कर है, ये तो बाद में पढ़ेंगे। ये अश्वत्थामा वाली बात तो बता दी। बाबा मधुबन के लिए बांध काम पूरा हो गया कहाँ? हैं? परवणी में, नाम नहीं लिखा ना। अच्छा, लेकिन अभी तक मिनी मधुबन बना नहीं। क्या मधुबन बनने के पहले वहां से सेवा भेज सकते हैं? अरे इसका मतलब जब तक गीता पाठशाला रही तब तक सेवा नहीं भेजी गई है? अरे गीता पाठशालाओं में भी जो सेवा इकट्ठी होती है वो हेड ऑफिस में नहीं भेजी जाती है, है? उसका हिसाब किताब बाबा को नहीं भेजा जाता है? अरे भेजा जाना चाहिए कि नहीं? भेजा जाना चाहिए। चलो मधुबन बनने के पहले वहां सेवा भेज सकते हैं, जब गीता पाठशाला भेज सकती थी, भेज सकती है, और गीता पाठशाला वहां थी भी, तो अभी मधुबन बनने के लिए तो परमिशन मिल गई, रजिस्ट्रेशन भी हुआ पड़ा है 2 साल से, तो क्यों नहीं भेज सकते हैं? है? बाकी हाँ मधुबन नहीं बना क्योंकि वहां बहने अभी नहीं पहुंची है, आज नहीं पहुंची तो कल पहुंच जाएंगे। ये तो शूटिंग हो रही है। कैसी शूटिंग? आज की जो सरकार है वो तुरंत कार्य कर देती है या थोड़ा लंबा चक्कर चलता है? लंबा चक्कर चलता है। उस गवर्नमेंट की शूटिंग भी तो होनी चाहिए। लंबा चौड़ा चक्कर भी पड़े, कोई नहीं बोलेगा। लाओ महादेव की अच्छा महादेव की सवारी नंदी और पार्वती की सवारी शेर क्यों दिखाई है? है महादेव किसके ऊपर सवार होता है? है बैल के ऊपर सवार होता है। नाम क्या है उसका जो बैल के ऊपर सवार होता है? क्या नाम दिया? है महादेव, देवों में बड़ा देवता महादेव। उसकी सवारी नंदी बैल और पार्वती की सवारी शेर क्यों दिखाई है? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? हैं? हाँ, बहुत अड़ियल होता है, अड़ियल होता है कि नहीं है? हल चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते अगर बैठ जाए वो उठता ही नहीं, बहुत अड़ियल होता है। तो वो बैल है ब्रह्मा बाबा, वो ब्रह्मा बाबा महादेव की सवारी है अभी कि होगी? हैं? अभी तो सवारी नहीं है और अभी का गायन भी नहीं है। गायन कब का है? संपूर्ण अवस्था का गायन है या अधूरी अवस्था का गायन है? हाँ, तो बैल की आत्मा जब संपूर्ण बन जाएगी, चाहे वो हनुमान का हो, चाहे वो बैल का हो, चाहे महादेव को राम कहो, चाहे महादेव कहो, वो किसके ऊपर सवारी होगी? हैं? बैल के ऊपर सवारी होगी। अभी वो सवारी कर रहा है। ऐसे ही पार्वती की सवारी शेर दिखाई हुई है। क्या पार्वती के ऊपर कौन सवारी कर रहा है? नहीं, पार्वती किसके ऊपर सवारी करती है? शेर के ऊपर। कब? हैं? अभी सवारी करती है पार्वती शेर के ऊपर या संपन्न हो जाएगी तब सवारी करेगी?
संपन्न हो जाएगी।
अभी क्या शेर उसके ऊपर सवार है? नहीं है। तुम सब पार्वती हो नंबर वार, तो तुम्हारे ऊपर किसका कंट्रोल है? हैं? शेर का। वो शेर कौन है? हैं? वो शेर कौन है? अरे कोई शेर है या नहीं है? हाँ, तो शेर अभी पार्वतियों के ऊपर सवारी करता है, पार्वतियों को अपने अंडर में चलाता है या पार्वतियां उसे अपने अंडर में चला रही हैं? चाह चलो अब्बल नंबर पार्वती ही क्यों न हो, चला रही है? नहीं चला रही। तो अभी नहीं चला रही है, लेकिन पार्वती पक्की सूर्यवंशी बनेगी या नहीं बनेगी? जब पार्वतियां शक्ति स्वरूपिणियां बन जाएंगी, शिव शक्ति कही जाएंगी, सारा समाज समझ लेगा, संसार, अरे बाप रे ये तो शिव शक्ति है, इसमें तो देवी आती है, तो डर जाएंगे, है ना? तो वो शेर भी डर जाएगा। क्या शेर भी पार्वती के अंडर में आ जाएगा, पार्वती के अनुसार काम करेगा या पार्वती को दुत्कारेगा? अंडर में रहेगा, अंडर में काम करेगा। तो शेर कौन हुआ? अरे जंगल में शेर एक होता है कि ढेर सारे घर होते हैं? तो कौन है? हैं? जंगल में एक ही ऐसा जानवर होता है जो एक दहाड़ मारता है तो सारे जंगल के जानवर डर जाते हैं, भागते हैं। तो ये भी संसार क्या है? कांटों का जंगल है। इसमें तीन शेर आज की दुनिया में खास भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उनमें भी वो सर्वोपरि है, वो किसको दिखाया जाता है? है जो सामने है, सन्मुख है। तीन शेरों में एक सन्मुख, एक आजू में और एक बाजू में। तो जो सन्मुख है, जिसके लिए बोला है घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा, सामना करने के लिए कोई व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, वो शेर। तो वो शेर के लिए यहां पार्वती की सवारी बताया है। किसके इशारे पर चलता है वो शेर? हैं? पार्वती की इशारे पर चलता है। और
ऐसा कब होगा?
ऐसा कब होगा? जब आप आवाहन करेंगे। आप तो आह्वान करते ही नहीं है, आप आह्वान करते हैं है? करते हैं। अच्छा कि बाल बच्चे ज्यादा याद आते हैं, घर परिवार ज्यादा याद आता है, झूठ बहुत बोलते हैं है? नहीं आता था। सबसे ज्यादा पार्वती को याद, वो क्या नाम विजयमाला की हेड को याद करते हैं, विजयमाला का आह्वान कर रहे हैं। हाँ बाबा, ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा का आह्वान करती है, और माताजी विजयमाला की हेड का आह्वान करती है। झूठ बोले कौआ काटे है, कर रहे। फिर रिजल्ट क्या आ रहा है?
आएगा
गा। अच्छा, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा और शंकर को लकीरें दिखाई है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को भी लकीर, शंकर को भी लकीर दिखाई है, और विष्णु को क्यों नहीं दिखाई है? पूछने वाला ये नहीं जानता है कि वो जो लकीरें हैं, जो धागे हैं, वो किस बात के धागे हैं? वो धागे हैं स्मृति रूपी धागे, ब्रह्मा की स्मृति बड़ी लंबी है और शंकर की भी स्मृति बड़ी लंबी है। ये दोनों जब संपन्न रूप धारण कर लेते हैं तो दोनों मिलकर के एक विष्णु बन जाते हैं या नहीं? जब विष्णु संपन्न बन जाते हैं तो याद की जरूरत है, स्मृति रूपी धागे की जरूरत है, लकीर लगाने की जरूरत है कि भाग्य की लकीर लग गई है? सद्भाग्य की लकीर लग गई ना, फिर तो स्मृति की जरूरत ही नहीं। वर्षा मिल गया, फिर क्या चाहिए? शिवरात्रि का बेहद में अर्थ क्या है? शिव माने कल्याणकारी, और रात्रि माने अज्ञान की रात्रि। तो दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं, कम से कम एक जन्म लेते हैं। वो 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी चक्र में 500-700 करोड़ मनुष्य जो है वो अज्ञान में पड़े हुए हैं सृष्टि के आदि से ही, या ज्ञान में पड़े हुए हैं? सब अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो उनके जो दिन और रात होते हैं वो रात्रियां 5000 वर्ष की सारी रात्रियां शिवरात्रियां कहें या अकल्याणकारी रात्रियां कहें? कैसी रात्रियां हैं? अकल्याणकारी रात्रियां हैं, दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं, अकल्याण ही अकल्याण होता जाता है, आत्मा नीचे ही गिरती जाती है, दुख के जीवन में ही गिरती जाती है। तो सारी रात्रियां अकल्याणकारी रात्रियां हो गई। फिर वास्तव में शिवरात्रि कोई होती भी है या नहीं होती है? है? कौन सी रात्रि कहें जो शिवरात्रि होती है? हैं? हैं? कब? अरे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में, 5000 के सृष्टि रूपी चक्र में जब कृष्ण का जन्म होता है वो रात्रि, या नारायणों का जन्म होता है वो रात्रि, या राम और राम की गद्दियां लेने वालों का जन्म होता है वो रात्रियां, या द्वापर युग में जो 1250 वर्ष रात्रियां चलती हैं वो रात्रियां, या कलयुग में होने वाली रात्रियां वो कल्याणकारी रात्रियां हैं, या कोई और रात्रि है जो कल्याणकारी है? नारायण का जन्म तो 76 में हो गया, बाबा ने बोला है। नारायण लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो कौन सा सन आया? है 76 आया, तो क्या शिवरात्रि हो गई? है शिवरात्रि नहीं कही, बाप का क्या कहा, प्रत्यक्षता वर्ष कहा। तो बाप कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ? वेद के बाप तो दो हैं, तो कौन सा बाप संक्षेत्र में प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। शिवरात्रि तो नहीं कहेंगे राम को, राम है शिव है, या जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा शिव है? जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा शिव है, तो शिव की रात्रि कौन सी है? फिर साधारण शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। माना छत्र को भी शिवरात्रि तो कहें, क्योंकि बाप का प्रत्यक्षता हुआ, बाप की माने मनुष्य सृष्टि के बाप ही प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन वो भी तो तभी प्रत्यक्ष होता है जब शिव उसमें प्रवेश साबित हो। अरे मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप ही भी तभी तो प्रत्यक्ष होगा जब ये साबित हो कि उसमें शिव ने प्रवेश किया है।
संपूर्ण बनता है तो
हाँ, शिव ने प्रवेश तो किया, लेकिन टीचर बन करके प्रवेश किया क्या? वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये तीनों पार्ट तो साबित होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे। छत्तर को महाशिवरात्रि कहें? नहीं कहेंगे। तो महाशिवरात्रि कौन सी है? बताया कि तुम बच्चों को तामसी से सात्विक बनने में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, तो 40 वर्ष जब पूरे हो तब कहें महाशिवरात्रि है। 2018 में, 16-17 में महाशिवरात्रि होगी, सारा संसार मानेगा? फिर कैसे कहते हो तो महाशिवरात्रि हो गई? ब्राह्मण परिवार में तो 8 ही होंगे उस समय, संपूर्ण ब्राह्मण जिनको अनिश्चय पैदा नहीं होगा वो ही संपूर्ण कहे जाएंगे। हम और आपको तो निश्चय अनिश्चय का रोज चक्कर चलता रहता है, तो हम कहां संपूर्ण ब्राह्मण? आज जन्म लिया कल मर जाते हैं।
26-27
में, हाँ 2026-27-28 का जो टाइम है, उन वर्षों में से कोई एक वर्ष साबित हो जाएगा जब सारा ही सूर्यवंश और सारा ही चंद्रवंश जो कन्वर्ट होने वाले होंगे चंद्रदर्शियों में, वो भी सूर्यवंशी बन जाएंगे। माने 9,00,000 सितारे सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, यानी इस मनुष्य सृष्टि की 9,00,000 मनुष्य आत्माओं को 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ के रूप में समझ लेंगे कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यही ज्ञान में सबसे जास्ती चमक मारने वाली आत्माएं, तब कहेंगे महाशिवरात्रि। और
भगवान एक व्यापी बनकर आता है, फिर भी संगम पर सर्वव्यापी की शूटिंग क्यों की जाती है?
अरे एक व्यापी बनकर आता है तो सबके लिए सबकी बुद्धि में आ जाता है या एक की बुद्धि में आ जाता है? हैं? अरे वो एक व्यापी एक की बुद्धि में पक्का बैठता है या सबकी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है? एक तो एक के लिए सर्वव्यापी नहीं है, बाकी के लिए? बाकी लिए अभी भी सर्वव्यापी है। आज निश्चय उखड़ गया तो एक से निश्चय उखड़ता है तो दूसरी जगह निश्चय बैठेगा ना, किसी ने तो हिला दिया, जिसने हिला दिया वही उनका गुरु बन गया नया। और ऐसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट अपने अपने धर्मावलंबियों के गुरु बनने वाले हैं, हिला देंगे अपने में कन्वर्ट कर लेंगे, बाप का बाप की ग्लानी बुद्धि में बैठा ही देंगे, तो मरेंगे या जिंदा रह जाएंगे? मर जाएंगे। तो एक के लिए तो एक व्यापी बाकी के लिए, बाकी लिए अभी भी सर्वव्यापी। या ऐसे कहें कि चार छह आठ दस साल के लिए एक व्यापी, फिर बाद में फिर क्या होता है, है? फिर सर्वव्यापी हो जाता है। जो बोला है ब्रह्मा को हजार भुजाएं दिखाते हैं, हजार सहयोगी दिखाते हैं, शंकर को है सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते, क्यों क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि शंकर का जो कार्यकाल है, शंकर का जो पार्ट है, उस पार्ट को आदि से लेकर के अंत तक कोई भी सहयोगी नहीं बनकर के रह सकता। क्या कहा? आदि से लेकर अंत तक कोई भी सहयोगी लगातार बनकर के नहीं रह सकता। आज सहयोगी बनेंगे, कल स्थितियां परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि माया का काम क्या है, माया देखती है कि ये ज्यादा नजदीक पहुंचने वाला है और उसी के ऊपर सबसे पहले हमला करती है। ओम शांति।